राजा सुलेमान ने मंदिर के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया, परंतु उसका अंत बहुत बुरा हुआ। आगे के वर्षों में उसके बाद के अधिकांश राजा यहोवा से दूर हो गए। सबसे बुरे में से एक राजा अहाब था, जिसने मूर्तियों की पूजा को बढ़ावा दिया। परंतु परमेश्वर ने एलिया भविष्यद्वक्ता को अपने लोगों को अपने पास वापस बुलाने के लिए खड़ा किया। 17:16 आराधना, अपनी बाइबल में 1 राजाओं 18 खोले। जीत और आपदा के बीच अक्सर बहुत कम दूरी होती है। जब सुलेमान सिंहासन पर आया तो परमेश्वर के लोगों के पास उनके लिए सब कुछ था, बुद्धिमान नेतृत्व, मजबूत एकता और उनके देश में शांति। मंदिर के समर्पण के समय उनके बीच परमेश्वर की उपस्थिति आ गई थी, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया सुलेमान की सफलता ने शालीनता को जन्म दिया और उसके शासनकाल के बाद के वर्षों में भविष्य की आपदा के बीच बोए गए। सुलेमान ने 3 गलतियां की। सबसे पहले उसने पीड़ित लोगों के साथ संपर्क खो दिया। राजा का ध्यान यरूशलेम पर केंद्रित होने की वजह से दक्षिण में लोग समृद्ध हुए, जबकि उत्तर में उनके भाई बंधु मजदूरी के कार्यक्रम के तहत संघर्ष कर रहे थे, जिससे वे बहुत ही ज्यादा बेबस और असहाय महसूस कर रहे थे। शायद सुलेमान ने सोचा होगा कि उत्तर में लोग कम महत्वपूर्ण थे, परंतु उसके अदूरदर्शी नेतृत्व के दीर्घकालिक नतीजे थे। और जब उसने देश को अपने पुत्र रहुबियाम के हाथों में दिया, तब तक फूट के बीच बोए जा चुके थे। दूसरा, सुलेमान आत्मभोग में डूब गया। उसके पास लगभग असीमित शक्ति और महान संसाधन थे, और इसलिए वो वस्तुतः कुछ भी कर सकता था जो वो चाहता था। अपने शुरुआती दिनों में उसने अपना समय, शक्ति और पैसा परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ पूरा करने में लगाया, परंतु बाद में उसने अपने जीवन को आत्मभोग में लिप्त करने के लिए अपने पद का इस्तेमाल किया। सुलेमान की 700 पत्नियां और 300 रखेलियां हो गई थी, और ये भोग विलास ही उसका विनाश का कारण था। जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया, और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगाना रहा। तीसरा, सुलेमान ने वो करने का चुनाव किया जो सही के बजाय लोकप्रिय था। इतनी सारी विदेशी पत्नियों से विवाह करने के बाद वह उन देवताओं के लिए वेदियां बनाने के दबाव के आगे झुक गया जिनकी वे पूजा करती थी। उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मोआबियों के कामोश नामक घृणित देवता के लिए और अमोनियों के मोलिक नामक घृणित देवता के लिए एक एक ऊंचा स्थान बनाया, और अपनी सब विजातीय स्त्रियों के लिए भी, जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती और बलिदान करती थी, उसने ऐसा ही किया। यह परमेश्वर के लोगों के बीच घोर मूर्ति पूजा की शुरुआत थी। सुलेमान के शासन के आरंभ में यरूशलेम वो स्थान था जहां जीवित परमेश्वर ने अपना नाम रखा था, परंतु अंत तक आते आते यरूशलेम अन्य देवताओं के मंदिर से भर गया। यरूशलेम का कोई भी अंतुक ये निष्कर्ष निकाल सकता था कि इज़राइल का परमेश्वर बहुतों में से एक है। सुलेमान ने अपने जीवन के पहले भाग में परमेश्वर के लिए महान कार्य किए, और फिर बाद के वर्षों को आत्मभोग के कारण उसने अपने बहुत से अच्छे किए गए कामों को उलट दिया। उसने अपने पिता दाऊद से राज्य प्राप्त किया जो संयुक्त और शांति में था, परंतु उसने अपने बेटे को एक ऐसा राज्य सौंप दिया जो जल्द ही विभाजित हो जाएगा और युद्ध में होगा। जब रहुबियम ने सत्ता संभाली तो उसे उत्तर दिशा के लोगों के बीच असंतोष का सामना करना पड़ा। उन्हें यारोबाम में एक प्रधान मिला और वे उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। जब रहूबियाम ने सत्ता संभाली तो उसे उत्तर दिशा के लोगों के बीच असंतोष का सामना करना पड़ा। उन्हें यारोबाम में एक प्रधान मिला और वे उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और उसे अपने राजा के रूप में ताज पहनाया। इस प्रकार उत्तर में 10 गोत्र दाऊद के वंश से अलग हो गए, जिसे परमेश्वर ने आशीर्वाद देने की प्रतिज्ञा की थी। यारोबाम 10 उत्तरी गोत्र का एक धूर्त नेता था और उसने धर्म की एकजुट शक्ति को समझ लिया था। उसने देखा कि अगर उत्तर के वफादार लोग मंदिर में आराधना करने के लिए यरूशलेम जाते रहेंगे तो उन्हें उस एकता की याद आएगी जो उन्होंने दक्षिण में अपने भाइयों और बहनों के साथ साझा की थी। इसलिए यारोबाम ने अपनी पूजा के केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया। उसने सोने के 2 बछड़े बनवाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए हे इज़राइल, अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया है। ये वही शब्द थे जिनका उपयोग हारून ने जंगल में सोने का बछड़ा बनाते समय किया था। इससे और भी ज्यादा बुरा आगे होने वाला था। यारोबाम ने राज्य अपने पुत्र नदाब को सौंप दिया और नदाब अपने पिता के मार्गों पर तब तक चलता रहा जब तक कि भाषा ने उसे मार न डाला। उसके बाद एला आया जो शराबी और हत्यारा था। फिर जेरेमी था जो राजद्रोह का दोषी था और केवल 7 दिनों तक टिक सका। और फिर ओमरी, जिसने उन सबों से भी जो उससे पहले थे अधिक बुराई की। अंत में अहाब था जो ओमरी से आगे निकल गया और उसने उन सबसे अधिक जो उससे पहले थे वो कर्म किए जो यहुवा की दृष्टि में बुरे थे। अहाब ने कुकियात इजाबेल से विवाह किया, जिसने महल की शक्ति का उपयोग उत्पीड़न के अभियान को शुरू करने के लिए किया, जिसमें परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं का शिकार किया गया और मार डाला गया। सुलेमान की मृत्यु के बाद के वर्षों में इज़राइल पहचान से परे बदल गया था। सुलेमान के शासन के आरंभ में राजा ने कहा, परमेश्वर एक ही है। यारोबाम के समय तक आधिकारिक स्थिति यही थी कि कई देवता है, और अहाब के समय तक यह कहना अस्वीकार्य था कि एक ही परमेश्वर है, और जिन्होंने ऐसा किया वे हिंसक उत्पीड़न के शिकार हुए। इसलिए परमेश्वर ने एलिया नबी को अपने लोगों के बीच सच्ची उपासना बहाल करने के लिए भेजा। कार्मेल पर्वत का दृश्य एक बड़े मुकाबले का था। अहाब ने बाल के 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को देश भर के लोगों के साथ भेजा। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तो एलिया ने लोगों को एक प्रश्न के साथ चुनौती दी, तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। एलिया ने परंपरा पर चुनौती नहीं की, उसने सच्चाई पर चुनौती की। परमेश्वर की आराधना करने का एकमात्र कारण यह है कि वह परमेश्वर है। किसी को यह कहने का अधिकार नहीं है कि आपको ईसाई होना चाहिए क्योंकि आपके माता पिता ईसाई थे, या क्योंकि ईसाई धर्म आपकी संस्कृति में प्रमुख धर्म है। ईसाई धर्म इस दावे पर खड़ा होता या गिरता है कि यह सत्य है कि यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसका अनुसरण करो। एलिया के प्रश्न ने सत्य और त्रुटि की श्रेणियों को मान लिया, और लोगों को इन शर्तों पर विचार करना बहुत कठिन लगा। उन्हें इस विचार के साथ पाला गया था कि आप जिस भगवान की पूजा करते हैं वह केवल एक व्यक्तिगत पसंद है, विश्वास एक निजी मामला है और प्रत्येक व्यक्ति को पूजा करने का एक तरीका खोजना चाहिए जो उनके अपने व्यक्तित्व के अनुकूल हो। परंतु इससे पहले कि आप आराधना कर सके, आपको यह जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर कौन है। सच्ची आराधना सत्य प्रकट करने की प्रतिक्रिया है। सार्वजनिक आराधना को सत्य की बुनियाद पर बनाना चाहिए। हमें सत्य गाना चाहिए, सत्य पढ़ना चाहिए और सत्य प्रार्थना करनी चाहिए और सत्य का प्रचार करना चाहिए। एलिया चाहता था कि लोग जाने कि केवल एक ही जीवित परमेश्वर है और इसलिए उसने बाल के नबियों को एक बलिदान तैयार करने के लिए आमंत्रित किया और फिर बाल को आग भेजकर उत्तर देने के लिए बुलाया। बाल के भविष्यवक्ताओं ने खुद को चुनौती दी और उन्होंने अपने देवता को पुकारा, हे बाल हमारी सुन। वे वेदी के चारों ओर नाचते थे और आवेश में आ जाते थे, जो इतने उज्जवल, रंगीन और जीवंत से शुरू हुआ था वह जल्दी अंधकार से भर गया और एक अधिक बुराई से भरा तत्व दिखाई देने लगा। बाल के भविष्यद्वक्ताओं ने स्वयं को काटना शुरू कर दिया। इससे पहले कि वे हार मानने के लिए तैयार हो, उन्होंने स्वयं को आत्मपीड़ित पीरा से भर दिया। परंतु इस सारी गहन गतिविधि के बाद किसी ने उत्तर नहीं दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। बाल की पूजा आत्म अभिव्यक्ति के अभ्यास से अधिक कुछ नहीं था। भविष्यद्वक्ताओं आपस में बात कर रहे थे क्योंकि और कोई नहीं सुन रहा था। बाल की पूजा विकसित हुई क्योंकि इतिहास के किसी समय पर लोगों ने बाल नामक देवता के बारे में पौराणिक कहानियां बनाई और उन्हें लिखा। फिर अन्य लोगों ने बाल की मूर्तियां बनाई और उन्हें लकड़ी पर तराशा। परंतु बाल की उपासना में मनुष्य के मन ने जो स्वप्न देखा था और जो मनुष्य के हाथों ने बनाया था, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं था। यह पूरी चीज एक सांस्कृतिक रचना थी और इस कारण से इसमें कोई शक्ति नहीं थी। आज बहुत से लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ईसाई धर्म ठीक उसी तरह विकसित हुआ जैसे बाल की पूजा होती है। वे मानते हैं कि बाइबल भी प्राचीन काल्पनिक कथाओं की एक पुस्तक है और चूंकि वे मानते हैं कि यह मानव संस्कृति का निर्माण है, वे इस बात पर जोर देते हैं कि इसमें कोई शक्ति नहीं है। यदि वे अपनी धारणा में सही होते तो वे अपने निष्कर्ष में सही होते। एक संस्कृति द्वारा निर्मित धर्म को दूसरी संस्कृति पर नहीं थोपा जाना चाहिए। एक धर्म जो केवल एक पीढ़ी की पसंद था, उसे दूसरी पीढ़ी पर नहीं थोपा जाना चाहिए। यदि सभी धर्म मानव निर्मित है तो उनमें से कोई भी सत्य होने का दावा नहीं कर सकता। परंतु एलिया जानता था कि जीवित परमेश्वर कोई सांस्कृतिक रचना नहीं थे। वो जीवित परमेश्वर के ज्ञान को देश में बहाल करने के लिए तरस रहा था, इसलिए उसने एक वेदी बनाई और बलिदान को भिगोने के लिए उस पर पानी डाला। तब एलिया ने प्रार्थना की, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होमबली को लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया और गड्ढों में का जल भी सुखा दिया। उस आग की तीव्रता की कल्पना कीजिए जिसने ना केवल लकड़ी बल्कि पत्थरों और धूल को भी जला दिया। ये देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। कल्पना करने की कोशिश करें कि आप किसी भीड़ में हैं आपने अपनी संस्कृति के प्रचलित विश्वास को स्वीकार कर लिया है कि एक धर्म अनिवार्य रूप से दूसरे के समान है। परंतु जैसे ही आप एलिया को प्रार्थना करते हुए देखते हैं, आकाश आंख से भर जाता है। अचानक आपको यह स्पष्ट हो जाता है, एलिया सच बोल रहा है, यहोवा ही परमेश्वर है और अब उसके न्याय की आग गिरने वाली है। इस अद्भुत सत्य के बारे में सोचे, परमेश्वर की आग बलिदान पर गिरी, लोगों पर नहीं। यह हमें उस क्रूस की ओर संकेत करता है जहां परमेश्वर का न्याय उन सैनिकों पर नहीं डाला गया था जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था, या उस भीड़ पर नहीं जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था, परंतु स्वयं यीशु पर जो हमारे लिए बलिदान बन गए। यीशु ने उस न्याय को आत्मसात कर लिया जो पापियों पर गिरना था। ये उन पर इसलिए गिरा कि वो हम पर न गिरे। परमेश्वर ने न्याय को हमारे ऊपर से फेर कर यीशु पर डाल दिया और इस तरह उन्होंने हमें अपने साथ मिला लिया। तो आइए हम देखें कि आज हमने क्या सीखा। सच्ची आराधना हमेशा सत्य प्रकट करने की प्रतिक्रिया है। यह जीवित परमेश्वर की ओर निर्देशित है, प्रभु यीशु मसीह के इर्द गिर्द केंद्रित है और पवित्र आत्मा से प्रेरित है। सच्ची आराधना को वही बढ़ावा मिलेगा जहां परमेश्वर की सच्चाई का प्रचार किया जाता है, जहां यीशु मसीह को ऊंचा उठाया जाता है और जहां परमेश्वर के लोग अपने जीवन में पवित्र आत्मा के कार्य के प्रति समर्पण करते हैं। यदि आप अपनी आराधना में बढ़ना चाहते हैं तो अपनी बाइबल खोले और अपने मन को उसमें डुबाए जो परमेश्वर अपने बारे में कहते हैं। पवित्र आत्मा आपके हृदय में आराधना को प्रेरित करने के लिए सत्य का उपयोग करेगा।